हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 7 वर्स नंबर 27। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूत द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यन्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यन्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यन्ति परन्तप शब्दात् इच्छा अर्थात ख्वाहिश वेश या इच्छा द्वेष अर्थात घृणा समुत्थेन अर्थात उदय होने से जब किसी के हृदय में इच्छा और द्वेष उदय होता है द्वंद्व मोहेन भारत उसका कारण होता है द्वंद्व यानी द्वंद्व माना दो ड्वेलिटी अगर आपको कोई चीज पसंद लगेगी तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी पसंद नहीं लगेगी तो क्या होगा उससे घृणा हो जाएगी तो ये द्वंद्व के कारण इच्छा और द्वेष होता है द्वंद्व मोह और मोह के कारण और भारत हे भरतवंशी आगे कहते हैं सर्वभूतानि सारे सर्व यानी सारे जितने भी जीव हैं सम्मोहम वो मोहित हैं सर्गे कब से जब से उनका जन्म हुआ है यान्ति प्राप्त होते हैं परंतप हे परंतप यानी शत्रुओं के विजेता यानी भगवान कह रहे हैं अनुवाद देखिए हे भरतवंशी हे शत्रु विजेता समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं शिला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय हो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है जीव की कि वो परमेश्वर के दास है वास्तविकता ये है और आगे कहते हैं मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है फिर माया जब ये वास्तविक ज्ञान उसका खत्म हो जाता है मोह से दूर हो जाता है तो क्या हो जाता है माया उसको जकड़ लेती है और वो भगवान को नहीं समझ पाता यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं और जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है वे सब यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपराप शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं यही उनका दुर्भाग्य है ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हैं और सोचते हैं यह मेरी पत्नी है यह मेरा घर है मैं इस घर का स्वामी हूँ मैं इस स्त्री का पति हूँ यही मोह के द्वंद्व हैं जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त होते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। सातवां अध्याय, भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अत्यंत ही सुंदर बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में वो कौन सा कारण है जिसके कारण शुद्ध जीव आत्मा मोहग्रस्त होती है और अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाती। बहुत ही महत्वपूर्ण यह बात बता रहे भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं देखो, पहले जब ये अध्याय चैप्टर स्टार्ट किया ना, तभी भगवान ने क्या कहा, मैया सत्त मना पाठ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समक्रम माम यथा क्यास्यसि तच्छृणु। तुम्हें श्रवण करना है। देखो अर्जुन, ध्यान से सुनो अर्जुन, छह अध्याय पिछले क्या नहीं सुन के आया था, सुनते हुए आया था, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब जो तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनो। और भगवान आज बता रहे हैं यहाँ पर श्लोक में डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे पहली बात है वो है इच्छा। भगवान कहते हैं इच्छा एक ऐसी वस्तु है, इच्छा और द्वेष ये दो चीज़ें हैं, दोनों अपोजिट हैं, ये द्वंद्व है। इच्छा यानी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, घृणा अर्थात जो चीज़ आप प्राप्त नहीं करना चाहते हो, द्वेष होता है उससे। तो भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, और ये इच्छा और द्वेष कब से स्टार्ट होती है, भगवान ने बताया सर्गे यान्ति परन्तप। जिस समय जीव जन्म लेता है ना, उसी समय से उसके हृदय में इच्छा और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। छोटा बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही उसको पता चलता है कि भाई ये चीज़ उसको अच्छी, जैसे गीली जगह पे नहीं बैठना होता है, उसको गंदा जगह होगी वो नहीं, उसको माँ चाहिए होती है, माँ का स्तनपान करना चाहता है। मतलब हमें भले वो इतना सूक्ष्म होता है उसकी इच्छा, लेकिन फिर भी उसके अंदर इच्छा और घृणा होती है। इसीलिए भगवान ने कहा सर्गे यानी जन्म जैसे ही होता है, समस्त जीव जन्म लेते हुए, और ये भी नहीं कि कुछ पर्टिकुलर जीवों में ऐसा होता होगा और कोई है ना बाकी सब इससे मुक्त होंगे, नहीं। भगवान ने कहा है कि सर्वभूतानि, ये इच्छा और द्वेष का जो मेंटेलिटी होती है, जो ये भाव होता है, वो सर्वभूतानि सारे जितने भी जीव हैं, और उनमें सर्गे यान्ति यानी स्टार्ट से भी है। और भगवान ने यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर शब्द से एड्रेस किया अर्जुन को, कहा परंतप, क्योंकि आप परंतप हो, आप शत्रुओं को जीतने वाले हो, इसलिए अब तुम्हें इस मोह को, क्योंकि सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे भूत सारे जीव जो हैं वो इसके कारण मोहग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इच्छा और द्वेष के द्वारा ही द्वंद्वों में ही मोहित हैं। तो क्योंकि वो इस तरह से अपनी एनर्जी और अपना समय दोनों ही इन इच्छा और घृणा के अंदर समाप्त कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्योंकि परंतप हो, आप शत्रुओं को जीतने वाले हो, तो वास्तविक शत्रु तो ये मोह है, वास्तविक शत्रु तो यह इच्छा है, यह द्वेष है, तो आप कृपा, भगवान उनको कह रहे हैं कि आप इन दोनों शत्रुओं को जीतो, आप शत्रु विजेता हो, आप इन दोनों शत्रुओं को जीतो। इसी से वास्तव में आप ये सोच रहे हो ना कि मैं युद्ध ना करके अपने कुल का कल्याण करूंगा, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, द्वंद्व मोहिन भारत भरत वंश का कल्याण तो तुम तब करोगे जब तुम इन इच्छा और द्वेष से मुक्त हो जाओगे और इस मोह से मुक्त होकर अपने वास्तविक कल्याण की ओर अग्रसर होगे। तो हम इन कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि इच्छा क्या, वास्तव में क्या होता है। जो श्लोक का पहला वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इच्छा। वास्तव में आज का जीव जो है वो जीता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बस एक ही जीवन का लक्ष्य रह गया है कि कैसे मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करूं। छोटे से छोटा बच्चा होगा, वो उसको एक चॉकलेट चाहिए होगा वहाँ से लेकर, और एक मृत्यु आसन पर बैठा हुआ बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति होगा, उससे छोटे बच्चे से लेकर मृत्यु तक पूरा जिंदगी, पूरा जीवन जीव केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते 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 अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव की वास्तविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप में परमेश्वर की अधीनता है। अब क्योंकि वो जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है, वो याद नहीं करता कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। अब इच्छा किस लिए करता है जीव? इच्छा का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति की वासना को पूरा करना, है ना। इच्छा का क्या मतलब होता है? कोई भौतिक इच्छा है, सारी ज्यादातर 100% भौतिक ही होती है। बाकी जो भक्ति की इच्छाएं होती है वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है कि भाई मुझे भगवद गीता पढ़नी है, मुझे भगवान के पवित्र नाम का जप करना, ये इच्छाओं की बात नहीं हो रही है। ये असल में क्या होता है, इच्छा और दूसरी इच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं। वे कहते हैं, निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नामक काम। इच्छा या काम, उसका मतलब है जिसकी वजह से तुम अपनी इंद्रियों को पूरा करो। और अगर आप कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो, मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो, तो उसका मतलब होता है इच्छा या कामना, ठीक है। लेकिन कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हो तो उसको इच्छा या काम नहीं कहता शास्त्र, उसको क्या कहता है? प्रेम कहता है, उसी को भक्ति कहता है। तो यहाँ पर जो इच्छा की बात हो रही है ना, वो केवल और केवल इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ भगवान ने जो बताया कि इच्छा, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव की वास्तविक स्थिति क्या है, शुद्ध ज्ञान रूप में परमेश्वर की अधीनता। वास्तव में जीव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब वास्तविकता तो ये है, लेकिन क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को क्या भूल जाता है, इसी आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तब माया के वशीभूत हो जाता है। अब शुद्ध ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, लेकिन मोह हो जाता है। मोह क्यों हो जाता है? मोह होता है अज्ञानता के कारण, क्योंकि जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है और अपने आप को यह शरीर मानने लगता है, जिसके कारण वो इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करना शुरू कर देता है। फिर इस शरीर को जो कुछ पसंद नहीं लगता वो उसे पसंद नहीं लगता, और जो चीज़ उसे अच्छी लगती है तो उसे प्राप्त करना चाहता है। अभी इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी, उनका ये होता था कि जब भी वो प्रवचन करते थे तो एक बात पे बहुत जोर देते थे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। बार 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 श्रील प्रभुपाद जी ये बात बताते थे बताते थे बताते थे कि आप यह शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो, आप यह शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो। तो जब पहले पहले जब आए थे तब किसी भक्त ने बोला, श्री प्रभुपाद जी ये तो पता चल गया ना, आपने बहुत दफा बताया है, अब कोई नई बात बताओ। आजकल जीव नई बात सुनना चाहता है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि हैव यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। तब ना उसने कहा, नॉट एग्जैक्टली प्रभुपाद, कि अभी तक इतना मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात पता चल गई है। तो पता चलना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, श्री प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इसीलिए तुम्हें बार 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 बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये रियलाइज हो जाए कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो क्योंकि जब तुम्हें ये बात रियलाइज हो जाएगी ना, फिर तो और कुछ रह ही नहीं जाएगा ना, फिर तो इच्छा भी नहीं रहेगी, फिर तो द्वेष भी नहीं रहेगा, फिर तो मोह भी नहीं रहेगा, फिर तो केवल कृष्ण, क्योंकि आप जब पता चल जाएगा कि आप आत्मा हो, तो आपको पता, फिर आप ये करोगे कि भाई मैं आत्मा हूँ तो उसके हिसाब से मैं कार्य करूँ, क्योंकि अभी आप अपने आप को यहाँ शरीर समझ रहे हो, इसीलिए आप शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हो, शरीर को ही प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हो, शरीर से रिलेटेड जो वस्तु और व्यक्ति हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आप अपने आप को आत्मा समझने लगोगे तो आत्मा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो केवल कृष्ण है ना, क्योंकि कृष्ण का अंश है आत्मा, तो जब तक कृष्ण को प्रसन्न करेगी तो ही वो खुद प्रसन्न होगी। तो जब आपको यह रियलाइज हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो फिर आप कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचोगे, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहोगे, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना चाहोगे, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनना चाहोगे, क्योंकि आपको अपनी वास्तविक स्थिति पता चलेगी है ना। इच्छा अभी हमारी जो भी होती है वो शरीर के द्वारा, शरीर के लिए होती है, और हम जो कार्य करते हैं वो भी शरीर के लिए कार्य करते हैं। और फिर अगर हम भक्ति भी करते हैं ना, तो क्या होता है, मतलब अगर हमें पता चल गया, जैसे हम सब जानते हैं कि हम यार शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें पता चल गया, तो फिर क्या होता है, जब तक वह सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक क्या होता है, हम उसमें डूबते नहीं है, उस वस्तु में। जैसे कोई अगर अब महामंत्र है, महामंत्र जो है वो बहुत सिद्ध मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, लेकिन ये इतना आसानी से मिल जाता है कि अगर हमारे घर में एक तोता है ना, तो तोते को भी हम महामंत्र सिखा देते हैं, कि महामंत्र बोलते हैं उसको, अब मिठू बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी हमारे पीछे पीछे बोलना शुरू करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी ऐसे बोलेगा। लेकिन क्योंकि उस वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है उसके पास, वो अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा, भगवान के साथ उसका कोई संबंध नहीं समझता, कोई अभी तक उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे भले महामंत्र पता भी चलेगा ना, फिर भी यदि कोई उसकी गर्दन मरोड़ेगा ना, तो वो महामंत्र नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, टें 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 ऐसी आवाज निकालेगा। मतलब उसको पता है कि ये महामंत्र तो पता है, लेकिन उसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब आपको पता होगा कि आपकी स्थिति क्या है, और इस मंत्र से आपका रिलेशन क्या है, और इस मंत्र को जप करने से फायदा क्या है। तो जब तक आप अपनी, सबसे पहले हमें अपनी स्थिति जाननी है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा का रिलेशन कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर की अधीनता, कृष्ण के सरेंडर होना, कृष्ण की शरण में आना, और शरण में आने का एकमात्र तरीका हरे कृष्ण महामंत्र। तो फिर आपके ऊपर जब भी पीड़ा आएगी, जब भी दुख आएगा, जब भी प्रॉब्लम आएगी, या जब भी खुशी आएगी, जब मतलब उसके अतिरिक्त और कुछ सोचने को मिलेगा नहीं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है, केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर भव उतरे नर पारा। तो ये जो नाम को जप करते 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 आप क्या करोगे, इस भाव सागर को पार करोगे, लेकिन उससे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। देखो, ये नाम हमें इसलिए आकर्षित नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा शुद्ध ज्ञान जो है वो मोह के कारण शुद्ध ज्ञान समाप्त हो गया है, या समाप्त नहीं हो गया, ऐसे समझो ढक गया है, मोह ने उसको ढक्कन लगा दिया। अब मोह के इस ढक्कन को हटाने के लिए शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है शास्त्रों के द्वारा, शुद्ध वैष्णवों के द्वारा, तो इनको जब हम श्रवण करेंगे और प्लस महामंत्र के द्वारा हृदय का दर्पण इतना साफ करेंगे जिससे शुद्ध ज्ञान हृदय के अंदर आ सके, समा सके, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो जब हृदय प्रकाशित होगा तभी उसके अंदर शुद्ध ज्ञान अंदर जाएगा, और हम हमारी जो भौतिक मलिनता है कि हम अपने आप को यह देह समझते हैं उसके कारण इतना परेशान होते हैं, तो ये इच्छाएं उसी के कारण हो रही है ना। तो अभी आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा नीति शास्त्र भी बताता है कि हर व्यक्ति की तीन पत्नियां होती हैं, मतलब पत्नियां होना जिनको, जिनका भरण पोषण करने के लिए वो जीता है, ठीक है, एक भूख, दूसरी प्यास और तीसरी इच्छा। अब इसमें क्या है, दो पत्नियां जो हैं वो शांत हो जाती हैं, परंतु जो तीसरी पत्नी है वो कभी शांत नहीं होती। मतलब भूख और प्यास, वो समय समय पर उनको खाना खिला दिया जाए, पिला दिया जाए तो क्या होगा, वो संतुष्ट हो जाएंगी। मगर इच्छा एक ऐसी पत्नी है जो कि पक्की पतिव्रता नारी है। वो एक क्षण के लिए भी उस जीव का साथ नहीं छोड़ती। जब तक कि इसका शरीर साथ रहता है तब तक इच्छा साथ रहती है। इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती, तो इच्छा जो है वो कभी भी समाप्त हो भी नहीं सकती है। ये इच्छा ही तो है जो हमें यहाँ पर भगवद गीता पढ़ने पर विवश कर रही है। ये इच्छा ही तो है जिसके कारण हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर, अब इच्छा समाप्त नहीं होगी। इच्छा को ज्ञान के द्वारा हमें कन्वर्ट करना होगा। इच्छा, भौतिक इच्छा जो कि हमें फंसा रही है, उस इच्छा को भगवत प्राप्ति की इच्छा में कन्वर्ट करके हमें इस भव सागर से मुक्त, ये मुक्त इच्छा ही है जिसके कारण हमें बंधन प्राप्त होता है, और या इच्छा ही है जिसके कारण हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इच्छा जो है वो जीव की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। आपके पास अगर सबसे ज्यादा कीमती कोई वस्तु है ना, तो वो इच्छा है। लेकिन यही इच्छा यदि मोहवश रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। और दूसरा शब्द है घृणा। ये द्वेष है जिसका मतलब है घृणा, यानी कि किसी चीज से नफरत करना, ये चीज नहीं पसंद है। और जीव को सबसे ज्यादा घृणा पता है किससे होती है? यहाँ श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बताया है। अगर हम देखें, आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। वास्तव में घृणा का क्या मतलब है, द्वेष का क्या मतलब है कि मुझसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए। द्वेष का मतलब होता है कि मैं सबसे आगे निकलूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे अच्छा बनूं, मेरा ही सबसे ज्यादा नाम हो, मेरा ही सबसे ज्यादा यश हो, मुझसे ज्यादा आगे किसी को नहीं बढ़ना, इससे द्वेष। थोड़ा सा अब देखो, द्वेष जो है ना वो फीलिंग, वो होता है ना फील्ड ऑफ एक्टिविटी जो सेम होती है ना, उससे होता है। जैसे अगर मंदिर में भी हम देखते हैं, मतलब छोटा सा उदाहरण दे, मंदिर में जो एक कुक होता है और एक ना प्रचारक होता है, तो उन दोनों को आपस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे एक प्रचारक होता है, एक बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो शास्त्र सेल करता है, अब उसको प्रचारक से कोई भी है ना प्रॉब्लम नहीं है। और एक है ना समझो कुक होता है और दूसरा जो होता है वो पुजारी होता है, तो इन सबको आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका फील्ड ऑफ एक्टिविटी अलग अलग है। लेकिन जब फील्ड ऑफ एक्टिविटी सेम आएगा ना, तो क्या होगा कि अगर कोई प्रचारक है तो दूसरा उससे अच्छा प्रचारक आ जाएगा, फिर क्या बोलेंगे, अरे ये तो इतना अच्छा कर रहा है। लेकिन ये होता है बहुत ऐसा जो भक्ति में होता है ना, उसमें ईर्ष्या नहीं होती है। अब भौतिक चीजों को अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, कोई अगर बहुत ज्यादा फैशन में आगे है, उससे ज्यादा फैशन में आगे कोई लड़की होगी, तो उसको उससे नफरत सी लगेगी, घृणा आएगी कि वो क्यों इतना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन वो क्यों कर पा रही है। अगर किसी के 90% मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे दिन मतलब कोई दूसरे पेपर्स होते हैं, दोनों पक्के दोस्त होंगे, लेकिन उसके अगर 91% आ गए, तो दे बाहर से उसको बोलेंगे, हाँ बहुत आपने इस दफा बहुत मेहनत की, क्योंकि आप जाहिर सी बात है दोस्त है तो बोलना पड़े, लेकिन हृदय में ऐसा ही होता है कि नालायक तुम्हारे क्यों आए, मेरे आने सही थे, मेरे क्यों नहीं आए, 3 साल से मेरा रिकॉर्ड था तुमने तोड़ दिया। मतलब ईर्ष्या हो रही होती है अंदर से, क्योंकि वो चाहता है कि मैं नहीं चाहता मुझसे कोई आगे निकले, है ना। तो लेकिन आध्यात्मिकता में क्या होता है, जो ग्रेट होता है उससे हमेशा यही जो मतलब दूसरा होता है ना, जिसके पास नहीं होता है, वो क्या करता है, उस ग्रेट को जो उससे ज्यादा सीनियर होते हैं उसके चरणों को हमेशा हाथ लगा के उससे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ही महान हो, बहुत महान वैष्णव हो, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी कर पाऊँ, है ना। भौतिकता में क्या होता है कि वो ऐसे बताते थे कि भौतिकता में
हम एक दूसरे के सिर पर पांव रख के आगे बढ़ना चाहते हैं कि बस उसको सिर उसको झुकाना है, उसके सिर पर पांव रखना है और आगे बढ़ना है। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या होता है, उसके पांव पर सिर रखकर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यही फर्क है कि आध्यात्मिकता में द्वेष नहीं होता है, उसमें तो है ना और भी आशीर्वाद चाहते हैं हम। जो सीनियर, जितना जितना सीनियर होता जाएगा, एक तो जो जूनियर होंगे वो उसकी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा करेंगे, और दूसरा कि वो खुद भी उतना ही विनम्र होता जाएगा कि मैं ना आप लोग की कृपा से ये है सब कुछ हो रहा है, गुरु और कृष्ण की कृपा से हो रहा है, मुझ में तो कोई योग्यता नहीं। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाते उतनी उतनी विनम्रता आती जाती है। और भौतिकता में क्या होगा, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही उतना घमंड होते जाता है, और इस घमंड के कारण द्वेष होना लगता है। द्वेष का मतलब होता है, अब यहाँ पर द्वंद्व मोहेन भारत लिखा है, द्वंद्व का मतलब होता है ड्वेलिटी, अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान। अगर देखा जाए तो ये सारे ही जो हैं द्वंद्व, वो इस भौतिक शरीर से रिलेटेड है, और ये भौतिक इच्छाएं और भौतिक द्वेष जो है वो भी इस शरीर से ही रिलेटेड है। इसलिए भगवान, इसे एक भक्त बहुत अच्छा बताते हैं, द्वंद्व का मतलब होता है एनवी, एनवी, एन मीन्स, एनवी का मतलब होता है नो वैकेंसी, नो वैकेंसी वेयर, नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी जिसके अंदर द्वेष होता है उसको आध्यात्मिक जगत में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इच्छा, ये जो ईर्ष्या है, हाँ ईर्ष्या जो है एनवियस, वो आगे बढ़ते 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 भगवान से ईर्ष्या करने लगता है, और भगवान से कहता है कि तुम ही खाली भोक्ता क्यों बनो, मुझे भी भोक्ता बनना है। वास्तव में जीव की जब ये इच्छा होती है कि हम कृष्ण से पृथक आनंद का भोग करें, तो फिर वो कृष्ण से द्वेष करने लगता है कि अकेले तुम ही भोक्ता क्यों बनो, तुम अकेले भगवान क्यों हो, तुम अकेले ईश्वर क्यों हो, मैं भी ईश्वर बनूं। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने 16.14 में बहुत अच्छा बताया। भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति क्या सोचता है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मुझे ही ईश्वर बनना है, मुझे भोक्ता बनना है, मैं सबसे ज्यादा सिद्ध सिद्ध व्यक्ति और सबसे ज्यादा बलवान और सुखी व्यक्ति। आर्यो भी जनवानस नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी जिसके अंदर द्वेष होता है उसको आध्यात्मिक जगत में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इच्छा, ये जो ईर्ष्या है, हाँ ईर्ष्या जो है एनवियस, वो आगे बढ़ते 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 भगवान से ईर्ष्या करने लगता है, और भगवान से कहता है कि तुम ही खाली भोक्ता क्यों बनो, मुझे भी भोक्ता बनना है। वास्तव में जीव की जब ये इच्छा होती है कि हम कृष्ण से पृथक आनंद का भोग करें, तो फिर वो कृष्ण से द्वेष करने लगता है कि अकेले तुम ही भोक्ता क्यों बनो, तुम अकेले भगवान क्यों हो, तुम अकेले ईश्वर क्यों हो, मैं भी ईश्वर बनूं। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने 16.14 में बहुत अच्छा बताया। भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति क्या सोचता है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मुझे ईश्वर बनना है, मुझे भोक्ता बनना है, मैं सबसे ज्यादा सिद्ध सिद्ध व्यक्ति और सबसे ज्यादा बलवान और सुखी व्यक्ति। आर्यो भी जनवान अस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया, मैं सबसे ज्यादा महान हूँ, मुझसे ज्यादा बढ़कर और कोई होना ही नहीं चाहिए। तो उसके मन में ऐसी ईर्ष्या आने वाली होती है, तो वो हर वस्तु का भोग करना चाहता है। भगवान को कहता है कि खाली हर वस्तु का भोग तुम ही क्यों करो, तुम ही भोगता क्यों बनो, वास्तव में सब कुछ कृष्ण ने ही बनाया है, वास्तव में हर एक वस्तु के भोक्ता कृष्ण ही है। अगर कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ, भगवान जैसे कहते हैं 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर हूँ, मैं ही यज्ञ तपस्या का भोक्ता हूँ, तो क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, सबके क्रिएटर भगवान है, सबका स्रोत भगवान है। तो भगवान यदि ऐसा कहते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जाहिर सी बात है, भगवान की वस्तु है तो उससे ही भोग करना। जैसे हम जो कुछ भी पैदा करते हैं उसको हम अपना बोलते हैं ना, ये मेरा है मेरा है। जैसे मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी ड्रेस, मेरा मोबाइल, मेरे काम, मेरे ही काम, हर चीज मेरी होती है। तो फिर उसके लिए तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है ना। परंतु कृष्ण कहते अहम सर्वस्य प्रभाव। और भगवान ये भी बताते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम। अब जो कुछ हम पैदा करते हैं उस पर तो हम मेरा 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 कहते हैं, भले ही वो वास्तव में वो भी कृष्ण का होता है, लेकिन जब तक हमने उसको बनाया होता है, उसको पैदा किया होता है, उसको मेरा कहते हैं ना। अब उसको हम जैसे भी यूज करें तो फिर हमारी मर्जी होती है उस। तो फिर कृष्ण ने जो कुछ बनाया है या जो कुछ कुछ कृष्ण का है, और यदि कृष्ण कह रहा है कि वो मेरा है, तो फिर जाहिर सी बात है कृष्ण कह रहा है मेरा है तो मैं भोगूंगा। तो अब कृष्ण ने जो बनाया है, कृष्ण का जो है, उसको भी आप भोगोगे क्या? अब फिर भी भगवान जी भगवान को कहता है कि अकेले तुम भोगता क्यों बनो, ये सब चीजों का भोगता मैं बनो, मैं ईश्वर बनो, ईश्वरो हम अहम भोगी। तो नरोत्तम नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अच्छा बताते हैं। वे कहते हैं अहंकारे मत होए राधा कृष्ण पासरी, असत्य सत्य करी माने। कि मत हो जाते हैं, यानी कि वो अहंकार के द्वारा पागल हो जाते हैं, और राधा कृष्ण पास भरिया, वो राधा और कृष्ण को भूल जाते हैं और सब क्या सोचते हैं, ये सब मेरा है, और हर एक वस्तु पर क्लेम करते हैं कि ये मेरी वस्तु, ये मेरी वस्तु, ये मेरी। तो कृष्ण का ये अधिकार है कि वो हर हर किसी के सामने वो प्रकट नहीं होते हैं। और भगवान ने कहा नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। तो वो योग माया के द्वारा अच्छा देते होते हैं, और जीव यही मानने लगता है कि यह वस्तु मेरी है और मुझे इसका भोग करना है, तो वो कृष्ण से ईर्ष्या करने लगता है। लेकिन अब ईर्ष्या क्या होती है, ये इस भौतिक जगत में होती है। इच्छा और द्वेष, ये द्वंद्व होते हैं ना, वो इस भौतिक जगत में होते हैं। आध्यात्मिक जगत में ये द्वैत नहीं होते, ड्वेलिटी नहीं होती। आध्यात्मिक जगत तो अद्वैत है, यानी कि वहां पर सब कुछ कृष्ण की ही इच्छा है। जो कुछ भी हो रहा होता है तो वहां पर जितने भी जीव आत्माएं हैं वो शुद्ध हैं, और वो जानती हैं कि कृष्ण के कारण हो रहा है तो वो अच्छा ही होगा। उसे पता होता है कि कृष्ण जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो वहां पर ड्वेलिटी नहीं होती है, वहां पर केवल आनंद ही आनंद होता है। तो जब तक जीव को यह ज्ञान नहीं हो जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो शरीर को तृप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है, इच्छा प्राप्त करता है। अब उसके हृदय में कोई ना कोई इच्छा उत्पन्न होती है जिसको वो पूरा करना चाहता है। और शास्त्र में इसकी बहुत ही अच्छी उदाहरण दिया गया है। शास्त्र कहता है कि जीव किस तरह से अपनी इंद्रियों के द्वारा मोहित, इंद्रियों की इच्छा को पूरा करने के कारण मोहित हो जाता है और अपने उद्देश्य को भूल कर पुनः इस नरकमय जीवन में गिरने लगता है। शास्त्र कहता है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हतो पंच दिदेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते या सेवते पंचाभि एव स पंच। यानी बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। अब हिरण क्या है, वो उसका अपनी एक इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है। कौन सी इंद्रिय? कान पर। वो क्या करता है, कान, वो एक शिकारी आता है, वो सारंगी बजाता है और उस सारंगी को सुनकर हिरण दौड़ता 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 उसके पास आता है, क्योंकि हिरण श्रवण करता है और उसको वो धुन बहुत अच्छी लगती है, और वो दौड़ दौड़ कर शिकारी के पास आ जाता है और शिकारी उसे फंसा देते हैं। उसके बाद है मातंग। मातंग कहते हैं बहुत बलवान हाथी को। हाथी जो होता है वो बहुत बलवान होता है, उसको अब कुरंग जो हिरण है वो बहुत जोर से भाग सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी इंद्रिय कान करण इंद्रिय ने उसे फंसा दिया तो वो खुद ही जाल में फंस गया। अब हाथी कितना ज्यादा बलवान होता है, उसके अंदर कितनी ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन एक 5 फीट का व्यक्ति तो पतला सा होता है, वो उसके ऊपर बैठकर उसको चला रहा होता है, ऑर्डर कर रहा होता है, तो वो कैसे,
फंसा कैसे हाथी कि गांव में जहाँ पर हाथी होते हैं वहां पर एक खड्डा खोदते हैं, ऊपर घास वास बिछा देते हैं, तो भी क्या होता है उसके ऊपर एक हथनी की फोटो, मतलब एक हथनी नकली बना के पेपर वगैरह की वो लगा देते हैं। और इस तरह से हाथी को ऐसी रियल जो वास्तव में हथनी होती है ना, उसको ऐसे साइड में से जाकर थोड़ा सा स्पर्श करके, अब उसको वो ट्रेन होता है तो उसको लेकर जाते चले जाते हैं वापस, तो सामने देखता है वही वाली हथनी खड़ी होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ना होता है, अंधा होकर मातंग दौड़ना होता है। अब क्योंकि नीचे खड्डा होता है तो वो खड्डे में गिर जाता है और उसको फांस दिया जाता है, यानी स्पर्श इंद्रिय जो त्वचा है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्पर्श इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाता और फंस जाता है। उसके बाद है पतंग, पतंग कहते हैं पतंगे को, जो पतंग होता है ना जिसको परवाना कहते हैं। अब वास्तव में वो उड़ सकता है, जहां जाना चाहे जा सकता है, लेकिन जब वो अग्नि को देखता है, शमा को देखता है, जब परवाना, तब क्या होता है कि वो उसकी ओर आकर्षित होता है, वो उड़कर कहीं भी जा सकता है लेकिन अग्नि की ओर आता है और झुलस जाता है। उसके बाद है भृंग, भृंग होता है भंवरा। अब भंवरे के अंदर इतनी क्वालिटी होती है, वो अगर एक वृक्ष के ऊपर भी बैठे और उसको जोर जोर से ऐसे मतलब काटना शुरू करे ना, तो वृक्ष के अंदर भी वो सुराख कर सकता है पूरा। लेकिन वो भृंग जो होता है वो अपनी नासिका के द्वारा इतना मोहित होता है, उसको अपनी नाक की जो सुगंध होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, फिर क्या करता है कंवल के ऊपर बैठता है और कंवल के ऊपर बैठकर सूंघता है, उसको कंवल के फूल को सूंघता है और उसका मधु जो है वो पीता है, यानी कि उसकी टेस्ट इंद्रिय भी इतनी, जीभ का उसको टेस्ट का बहुत ज्यादा होता है कि मुझे ये पीना है, इसको सूंघना है, बहुत उसको अच्छा लगता है। तो भंवरा वो रस चूसने के लिए वहां पर होता है और जब शाम होती है कमल बंद हो जाता है और भंवरा उसके अंदर ही मर जाता है। और उसके बाद है मीन, मीन कहते हैं मछली को। अब मछली जो है वो पानी में रहती है, पानी में जाकर कोई भी मछलियों को एक एक करके नहीं पकड़ता है ना, लेकिन क्या करते हैं एक कोई वो लकड़ी जैसा लेते हैं और उसके ऊपर एक कीड़ा लगाते हैं या कुछ ऐसा खाने की चीज लगाते हैं और फिर मछली उसको मुंह में डालने के लिए आती है और उसको फौरन से मच्छर पकड़ लेते हैं, वरना मछली को नहीं। तो ये सब क्या है, एक एक इंद्रिय उनकी कंट्रोल में नहीं है जिसके कारण वो फंस जाते हैं। लेकिन आगे शास्त्र कहता है कि पंचाधिदेव पंच, ये सब इनकी इनमें से एक ही इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, तो एक प्रमादी स कथम न हन्यते, एक ही खाली इंद्रिय कंट्रोल नहीं है फिर भी वो हमेशा फंस जाते हैं, यह सेवते पंचाभि एव स पंच। तो फिर सोचो उस प्राणी के बारे में जिसकी पांचों इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो वो भला इस मोह माया से कैसे बच सकता है। और आजकल के मनुष्य की पांचों इंद्रियां भौतिक भोग के लिए हर वक्त जो है वो लालायित। अभी हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे, हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं है ना, मूवी में, मूवी थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है सीन, मतलब सबसे पहले हम अंदर आते हैं और वहाँ पर टीवी स्क्रीन पर सीन चल रहा होता है, कोई ना कोई बहुत ही सुंदर सीन, यानी कि फौरन सबसे पहले हमारी आंखों को अट्रैक्ट करता है वो, ठीक है, आंख अट्रैक्ट हो जाए। अभी उसके साथ साथ साउंड चल रहा होता है, बहुत ही मधुर साउंड चल रहा होता है, तो उससे कान भी है ना प्रभावित हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जिस सीट पर बैठे होते हैं वो सीट इतनी सॉफ्ट होती है, यानी स्पर्श भी बहुत सॉफ्ट प्राप्त होता है, एकदम कंफर्ट होता है। उसके बाद जिस रूम में बैठे हुए होते हैं वहाँ पर बार बार रूम फ्रेशनर भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पर स्प्रे करते हैं बार बार रूम फ्रेशनर का, तो हमारी नाक को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आँख कान नाक त्वचा रसना, और रसना कैसे कि जाहिर सी बात है मूवी देखने गए तो साथ में पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं और साथ में स्नैक्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो टेस्ट भी, टेस्ट इंद्रिय भी जकड़ लिया गया, और साथ साथ में क्या घुप अंधेरा, माया का महाजाल, यानी कि पांचों इंद्रियों को माया के कंट्रोल में कर दिया और ऊपर से माया का पूरा जाल कि बस अभी आपको जैसे हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जिस सीट पर बैठे होते हैं वो सीट इतनी सॉफ्ट होती है, यानी स्पर्श भी बहुत सॉफ्ट प्राप्त होता है, एकदम कंफर्ट होता है। उसके बाद जिस रूम में बैठे हुए होते हैं वहाँ पर बार बार रूम फ्रेशनर भी लगाते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पर स्प्रे करते हैं बार बार रूम फ्रेशनर का, तो हमारी नाक को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आँख कान नाक त्वचा रसना, और रसना कैसे कि जाहिर सी बात है, मूवी देखने गए तो साथ में पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं और साथ में स्नैक्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो टेस्ट भी, टेस्ट इंद्रिय भी जकड़ लिया गया, और साथ साथ में क्या घुप अंधेरा, माया का महाजाल, यानी कि पांचों इंद्रियों को माया के कंट्रोल में कर दिया, और ऊपर से माया का पूरा जाल के बस अभी आपको, जैसे होता क्या है तमसो मा जो तिर्गमया, शास्त्र क्या बोलता है अंधेरे से उजाले की ओर आओ, लेकिन मूवी में जाते वक्त क्या होता है उजाले से अंधेरे की ओर, बिल्कुल उल्टा, यानी कि वास्तव में जैसा होना चाहिए उसके बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर क्या है, जो जीव होता है वो पूरी तरह से सरेंडर होता है माया को, आँख कान नाक त्वचा रसना और फिर माया का घुप अंधेरा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वातावरण में रहने के बाद भी यदि कोई सोचेगा कि नहीं मुझे ये माया मोहग्रस्त नहीं कर सकती, तो फिर यह संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात्मेन्द्रियाणां नियम्य भरतर्षभ, कि हे भरत श्रेष्ठ, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ये इच्छाएं और द्वेष तो आता ही रहेगा, अब मतलब इस संसार में हम जब तक हैं इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन इच्छाओं को कन्वर्ट करना है भक्ति में, और द्वेष को किसमें कन्वर्ट करना है, द्वेष को उनने जो के भगवान की भक्ति नहीं करते, मतलब जो भगवान की भक्ति में बाधाएं होती हैं उनके द्वेष को हमें यूज करना। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो द्वेषी होता है ना उसके लिए परम नाम है, जैसे हमने पढ़ा नो वैकेंसी फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे श्लोकों में द्वेष के विषय में बताया। जैसे हम 9.1 को अगर देखें, भगवान कहते हैं इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामन असूयवे, अनसूयवे का मतलब होता है जो ईर्ष्या नहीं करते। भगवान कहते हैं अर्जुन क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान को बताता हूँ। यानी अगर हृदय के अंदर ईर्ष्या होती है कृष्ण के प्रति, यदि एनवियस भाव होता है, तो फिर वो कभी भी उसको भगवान कभी भी बात ही नहीं बताते, भगवान कोई चीज शेयर नहीं करते। भगवान के साथ प्रेम जब करते हैं तो ये भगवान जो है, भगवान ने अर्जुन को कहा इदम तुते गुह्यतम, ये बहुत सीक्रेट बातें हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्यों प्रवक्ष्याम्यन असूय में, कि तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है। और भगवान ने खुद तो बोला अर्जुन को कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण 67 में बोलते हैं अर्जुन को कि इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचम न च माम योभ्यसूयते, इदं ते ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है ना भक्ताय कदाचन, और जो मेरी भक्ति नहीं करता है न चाशुश्रूषवे वाचम, और जो भक्ति के नियमों को फॉलो नहीं करता है न च माम योभ्यसूयते, और जो मुझसे ईर्ष्या करता है, अभ्यसूयते का मतलब होता है ईर्ष्या, यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो द्वेष रखते हैं भगवान कहते हैं उसको तो भक्ति में एंट्री नहीं मिलती है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो तो ईर्ष्या करते हैं ना भगवान से, और जो ईर्ष्या करते हैं उनको तो कभी भी एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है लेकिन भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहा है तो फिर उससे द्वेष नहीं होता है, मतलब उससे आध्यात्मिक लोक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि खुद तो निराकार की भक्ति करेंगे, ठीक है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करेंगे ना उससे वो इतनी ईर्ष्या करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको नहीं सिद्धांत पता नहीं है कि ये भगवान का ही फेस है। जैसे अब जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान के तीन फेस होते हैं, भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं,
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराकार की भक्ति करते हैं, कुछ जो होते हैं वो साकार की भक्ति करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। उनमें से गलत कोई नहीं है, सिर्फ स्तर का फर्क है, स्टेज का फर्क है कि किसी को अभी निराकार रियलाइजेशन हुआ है, फिर आगे जाते जाते फिर वो साकार मतलब परमात्मा रियलाइजेशन करेंगे, फिर साकार रियलाइजेशन, तो उनमें ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वो भी तो भगवान का ही फेस है, वो जानते हैं कि वो भी तो उसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं जिसकी हम कर रहे हैं। लेकिन जो निराकारवादी होते, कुछ कुछ ऐसे दूसरे पंथ के होते हैं, वो इवन देवताओं में ईर्ष्या करते हैं, मेरा देवता महान है, मेरा भगवान, मैंने जिसको चॉइस किया वो महान है, मेरा गुरु महान है, मेरा पंथ महान है, मेरा मंत्र महान है, बस मेरा मेरा मेरा, दूसरे का, चलो अपने को अगर महान मानते हैं तो भी, लेकिन दूसरे का ही, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये हरे कृष्ण वाले तो कुछ है ही नहीं, उनके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, वो तो कुछ समझते भी नहीं है, ऐसे ही बस बैठ जाते हैं, महामंत्र खाली गाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, केवल उन्हीं को मैं यह ज्ञान बताता हूँ, उन्हीं को ही खाली समझ में आती है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18.79, भगवान कहते हैं श्रद्धावान न सूयश्च, आपको यदि मेरे अंदर श्रद्धा है, अनसूयश्च और ईर्ष्या नहीं है, श्रद्धा है और ईर्ष्या नहीं है, बस ये दो क्वालिटी। हालांकि दोनों अगर देखा जाए तो एक ही बात है, आपके अंदर श्रद्धा है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, लेकिन भगवान जोर देने के लिए बोल रहे हैं कि मुझ में श्रद्धा है और देख लो अपने हृदय के अंदर झांक कर कि कोई ईर्ष्या नहीं है। और फिर तुमने ये श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण किया, श्रवण यादपि यो नर, जो इस श्रद्धा के साथ बगैर ईर्ष्या के इस श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करता है, सोपी मुक्त शुभान लोकान, और वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है, प्राप्य पुण्य पुण्यात पुण्य कर्मणात। भगवान कहते हैं कि फिर क्या होता है, प्राप्नुयात, वो प्राप्त करते हैं पुण्य कर्मणात, वो पुण्य लोकों को जहाँ पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं। कौन? जो सिर्फ प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ और बगैर ईर्ष्या के श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करते हैं। तो जिसको भगवान के अंदर श्रद्धा होगी और भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं होगी तो वो क्या करेगा, आत्मसमर्पण, क्योंकि भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है और कोई भी भगवान के साथ ईर्ष्या नहीं है तो आत्मसमर्पण। तो क्या होता है आत्मसमर्पण का, क्या मतलब होता है कि जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, वर्तमान के लिए कृष्ण का धन्यवाद देते रहना, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। वास्तव में ये कोई ऐसी युक्ति नहीं है जिसका प्रयोग आप अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हो। आत्मसमर्पण का ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप भगवान को समर्पित करो और भगवान आपकी इच्छाओं को पूरा करे, नहीं, कृष्ण की योजनाओं को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस बात की है, केवल दृष्टिकोण बदलने की है, कि आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाए और कृष्ण की योजनाओं को स्वीकार करना सीख जाए। यदि आपको भगवान के साथ कोई द्वेष नहीं है, भगवान के अंदर पूरी श्रद्धा है और कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में उतारना है, तो आत्मसमर्पण करना है, जिसका क्या मतलब है कि भगवान की जो भी योजना है उसे स्वीकार करना है। हे कृष्ण, वर्तमान क्षण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्षण, इस समय मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी क्षण है, यही मेरे लिए सर्वोत्तम है, अन्यथा ऐसे क्षण को आप मेरे लिए निर्मित ही क्यों करते। ये श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के अंदर कि हे कृष्ण, आप जो भी करते हैं उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं है, योर प्लान्स आर मोस्ट परफेक्ट देन माई ड्रीम्स, आपने जो कुछ मेरे लिए सोचा है वो मेरे सपनों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये यदि भगवान के अंदर हमारी इतनी श्रद्धा होती है और भगवान के प्रति कोई हमारा द्वेष नहीं होता है, तभी हम वास्तव में भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर तो कोई द्वंद्व रह नहीं जाएगा ना, फिर तो कोई ड्वेलिटी नहीं रही, हर कुछ जो भी हो रहा है मेरे साथ वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगला अंत में, श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा
आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका पति हूँ, ये स्त्री है, यही मोह द्वंद्व है। और जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख होते हैं। जब तक आपको कृष्ण के अंदर पूरी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक द्वंद्व खत्म नहीं होंगे, तब तक ईर्ष्या खत्म नहीं होगी, तब तक द्वेष खत्म नहीं होगा, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब कृष्ण के ऊपर आपको पूरा पूरी श्रद्धा है, आपको पूरा ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संबंध केवल कृष्ण से है, कृष्ण को समर्पित करना, कृष्ण की अधीनता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और वे भगवान को समझ जाते हैं। और यहाँ पर तभी वो, जब ये मोह खत्म हो जाता है, यहाँ जैसे हमारे श्लोक में क्या है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्व भूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तपः, के सारे जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से मोह ग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो जब ये इच्छा द्वेष और घृणा खत्म हो जाएगी, इसकी बजाय क्या आ जाएगा, श्रद्धा। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति जब इसकी जगह ले लेगी तो फिर मोह खत्म हो जाएगा और हम जीव जो है वो वास्तविक स्थिति को प्राप्त करेगा, वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जो क्या है, कृष्ण प्रेम। और कैसे प्राप्त होगा, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरीके